नमस्ते, श्री माँ का योग। और आज हम लोग धम्म पद के कुछ एक्सट्रैक्ट को लेंगे। एक छोटा सा बैकग्राउंड, माँ ने 29 से 31 भी कन्वर्सेशन से, उनके 51 से भी हम देखते हैं, लेकिन 57 में, ये लास्ट में उन्होंने धम्म पद को लिया। और क्यों लिया? एक कारण यह था कि उन्होंने देखा मेरे बच्चे तो एक बेसिक प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं, ये तो वही जीवन जी रहे हैं अचित ज्ञान अंधकार का। तो उन्होंने धम्म पद को लिया। मां एक एडेप्ट थी बुद्धिस्ट योग में, इसकी बात हम सब लोग जानते हैं। श्री अरविंद ने स्वयं कहा है, उनकी प्रेयर में भी है, शी वॉज एन एडेप्ट इन द बुद्धिस्ट योगा एंड द योगा ऑफ द गीता। इन दोनों में वो ऑलरेडी सिद्ध थी। और कई कहानियां इस तरह की उनकी, और वो शाक्य मुनि गौतम बुद्ध की कन्वर्सेशन उनकी डॉक्यूमेंटेड है प्रेयर्स एंड मेडिटेशन में। तो माँ से बेहतर और कौन धम्म पद के बारे में बता सकता है? और जैसे श्री कृष्ण एसेज ऑन द गीता में गीता को अपग्रेड करते हैं, गीता के अंदर इंटेग्रल ट्रूथ और सुप्रामेंटल की ओर ले जाने का एक मार्ग खोल देते हैं, वैसे ही श्री माँ धम्म पद, जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल एक्सप्लेनेशन अलग है और यहां हम देखेंगे, माँ धम्म पद के माध्यम से हमको आगे जाने का मार्ग खोलती हैं। धम्म पद का जो मुख्य ये है, ये जीवन दुख है पहला सत्य, और दुख का उपज डिजायर्स के कारण होती है, कामना है वहां दुख है, और कामना से छुटकारा पाने का मार्ग है धर्म, धर्म का मार्ग धम्म पद, वो धम्म कहा गया है, और वो एटफोल्ड पाथ है जो बुद्ध ने दिया है, और इसके द्वारा हम लिबरेशन, हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सिंपल है ये और इजी लगता है लोगों को, ये कोई फिलॉसफी की बात नहीं है। सफरिंग है, कामनाओं के कारण है, इससे मुक्ति का मार्ग है, और आप निर्वाण, ये फेरा उसके आगे जिसको नहीं, तो धम्म पद। तो धम्म पद हमको मन और कामनाओं से मुक्त होने का एक बहुत सुंदर मार्ग दिखाती दिया। श्री अरविंद के योग में ये प्रथम चरण है, लेकिन बहुत उपयोगी है। जिसका माइंड पर कंट्रोल नहीं है, वो सुपर माइंड तो बहुत दूर की बात है। तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे श्री माँ की वाणी। इसमें माँ धम्म पद के कुछ चार कंजुगेट वर्सेस हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं। तो वो चार वर्सेस जो हमारे मन पर हमारे कंट्रोल को, नियंत्रण को और मास्टरी, स्वामित्व को दर्शाती कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप जाएं, और उसकी बड़ी सुंदर हिंट्स देती हैं। पहली वर्स, इफ ए मैन स्पीक्स और एक्ट्स विद एन ईविल माइंड, सफरिंग फॉलोज हिम एज द व्हील फॉलोज द हूफ ऑफ द बुलक दैट पुल्स द कार्ट। अगर तुम्हारे मन के अंदर एक, क्या कहा जाए, दुर्भावना है, ईविल माइंड, दुर्भावना से भरा हुआ है तुम्हारा मन, और तुम उसके प्रभाव में कुछ कहते हो और एक्ट करते हो, तो उसके परिणाम वैसे तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे जैसे जब बैल जा रहा है तो उसके साथ जो काट बंधी हुई है बैलगाड़ी, वो उसके पीछे पीछे जाती है। तो तुम्हारे जीवन में सफरिंग आएगी ही आएगी यदि तुम्हारे मन के अंदर दुर्भावना भरी है, और दुर्भावना के अधीन होकर तुम बोलते हो या कुछ कर्म करते हो। तो आप माता जी उस पर कमेंट दे रही हैं, There are four movements which are usually consecutive. अब ये कैसे हटाएं? But which in the end may be simultaneous. तो माँ बताती हैं कि मतलब विचारों के अंदर किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं आनी चाहिए, evil नहीं आना चाहिए, evil में बहुत कुछ है, केवल दुर्भावना नहीं है। Deceit, cunning, स्वार्थ, ये जो tendencies हैं, तो वो नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर माँ कहती हैं चार movement हैं। To observe one's thoughts is the first. पहले तो ये आना चाहिए कि हम अपने विचारों को देख सकें, सबको थोड़ा थोड़ा बताएंगी माँ। To watch over one's thoughts is the second. एक है जहां पर सब आप देख रहे हो क्या हो रहा है, जैसे कोई व्यक्ति देख रहा है घर में जो कुछ हो रहा है, अब watch over क्या हो रहा है, एक है कि केवल आप thought से अलग होके देख रहे हैं बाजार में, अब आप देख रहे हैं कि बाजार में कहां पे क्या मिल रहा है, यहाँ मीट मच्छी की दुकान है, यहाँ वेजिटेरियन फूड मिल रहा है, अब आप गौर कर रहे हैं, गौर करना। टू कंट्रोल वंस थॉट्स इज द थर्ड, इसके बाद आप नियंत्रण, कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, आ रहे हैं सारे थॉट्स लेकिन आप कुछ को स्वीकार कर रहे हो कुछ को हटा रहे हो। एंड टू मास्टर वंस थॉट्स इज द फोर्थ। मास्टर मतलब आप स्वामित्व हो गया, अब आपके अंदर किसी प्रकार की दुर्भावना, विकेडनेस, क्रूरता, किसी को हानि पहुंचाना, घृणा, ईर्ष्या, ये आएंगे ही नहीं, असंभव हो जाएगा। कंट्रोल में नियंत्रण कर रहे हो, आ रहे हैं लेकिन आप नहीं नहीं तुम मत आओ, और अंदर आ गया नहीं। मास्टरी, मास्टर इज ए मास्टर, वो होता है स्वामी। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ स्वामी, जो अपने ही ऊपर प्रभुत्व है जिसका। टू ऑब्जर्व, टू वॉच ओवर, टू कंट्रोल, टू मास्टर, ऑल दैट टू गेट रिड ऑफ एन ईविल माइंड, फॉर वी आर टोल्ड दैट द मैन हु एक्ट्स और स्पीक्स विद एन ईविल माइंड इज फॉलोड बाई सफरिंग एज क्लोजली एज द व्हील फॉलोज द हूफ ऑफ ए बुलक दैट प्लफ्स और ड्रॉज द कार्ट। बहुत सिंपल है कि आप ये चार मूवमेंट्स हैं थॉट के, क्यों कंट्रोल करो, तुम्हारे हित में है, दूसरे की छोड़ दो। नहीं कंट्रोल करोगे तो दूसरे को तो जो होगा होगा, दूसरे को भी होगा, आप संसार में पीड़ा बढ़ा रहे हो, भगवान का काम और कठिन कर रहे हो, लेकिन पहले तो आपको हानि होगी। तो कहा है किसी ने कि व्हेन यू सो द विंड यू रीप द व्हर्लविंड। आप घर में सांप पाल रहे हो कि मैं डराऊंगा लोगों को, तो एक दिन वो आपको ही काटेगा। तो माता जी बता रही हैं, दिस इज अवर फर्स्ट मेडिटेशन। चार मेडिटेशन दे रही है माँ। पहला मेडिटेशन टू ऑब्जर्व वंस थॉट्स, बस। फिर ये मेडिटेशन तो हम लोग करेंगे जीवन में, पर अभी हम नेक्स्ट वर्स पढ़ते हैं। माइंड प्रीडोमिनेट्स। देखिए हम लोगों ने सावित्री मंत्र मणि में भी ये पढ़ा, माइंड इज द मीडिएटर डिविनिटी, उसमें ईविल और गुड दोनों आ सकते हैं। माइंड प्रीडोमिनेट्स, एवरीथिंग प्रोसीड्स फ्रॉम माइंड। किसी ने कहा है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, सब वहां से प्रारंभ होता है। इन ऑल थिंग्स द प्रिमोर्डियल एलिमेंट इज माइंड। ऑफकोर्स ये बोधिसत्व बुद्ध की सेइंग है। अब माइंड के बियॉन्ड सुपर माइंड इसका कंसेप्शन नहीं है, ये केवल आपको सफरिंग से फ्री होने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इग्नोरेंस से फ्री होने के लिए, पीड़ा से फ्री होने के लिए, और अज्ञान अंधकार से फ्री होने के लिए, मुक्त होने के लिए। इफ ए मैन स्पीक्स और एक्ट्स विद ए प्योरिफाइड माइंड, हैप्पीनेस एकम्पनीज हिम एज क्लोजली एज इज इनसेपरेबल शैडो। अब इसका, इसको बोला गया कंजुगेट वर्स। पहले कहा गया इविल माइंड से बोलोगे सफरिंग पीछे पीछे आएगी, अब कहा गया लेकिन अगर शुद्ध मन से तुम कुछ भी करोगे बोलोगे तो तुम्हारे पीछे पीछे खुशी आएगी। सुखम, सात्विक मन है ना, जो सुखम प्रकाशम लाता है, अपने आप आएगी। कुछ ये नहीं बोला मुझे सुख दो, वो अंदर में ये चित्त के अंदर ये भाव आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर ईविल नहीं है। और हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई पीड़ा में है तो मतलब माइंड पर ध्यान दो, और अगर माइंड को अगर हम सुंदर विचार लाएंगे तो अपने आप हमारे पीछे पीछे सुख यूं आएगा जैसे व्यक्ति के पीछे उसकी छाया चलती है। अब मां बता रही हैं, दिस इज द काउंटर पार्ट ऑफ व्हाट वी रेड लास्ट टाइम। पिछली बार हम लोगों ने जो पढ़ा था ऑब्जर्व वंस थॉट, द धम्मपद कंट्रास्ट ए प्योरिफाइड माइंड विद एन ईविल माइंड। वी हैव ऑलरेडी सेड दैट देयर आर फोर सक्सेसिव स्टेजेस फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ द माइंड। ए प्योरिफाइड माइंड इज नेचुरली ए माइंड दैट डज नॉट एडमिट एनी रॉन्ग थॉट। किसी को ये श्रीमद् भगवद गीता में भी इसके उदाहरण दिए हैं कि असुर कैसे सोचता है। अब वहां देवों के बारे में तो उन्होंने गुण बता दिए, असुर के भी बताते कुछ एक, दंभ, क्रोध, ये असुरों की संपदा है, संपत्ति है। तो असुर कैसे सोचता है, आज मैंने इतना धन मेरे शेयर मार्केट से मिल गया, कल इससे और ज्यादा मिलेगा, आज मैंने इस शत्रु को पराजित कर दिया, कल मैं और शत्रुओं को पराजित करूंगा, मैं दान दूंगा, मैं राज्य करूंगा, मुझसे बड़ा कोई नहीं। ये असुरी संपदा है। ऐसे विचार जब आए तो उनको कहना चाहिए भाई कहां से आ रहे हो, भाई नहीं वो शत्रु हैं। यही कहा गया है ना कि श्रीमद् भगवत में, आत्मेव आत्मनो बंधु आत्मनेव रिपुरात्मना, द सेल्फ इज द एनिमी ऑफ द सेल्फ एंड द सेल्फ इज द फ्रेंड ऑफ द सेल्फ, द अदर वे राउंड। तो माँ कहती हैं जो रॉन्ग थॉट्स कुविचार नहीं आने देते हैं और जिनकी मन के ऊपर नियंत्रण होता है तब उनको ये प्रभाव होता है, उनके मन के अंदर ये जागृत होती है अवस्था। लोग अक्सर प्योरिटी को क्या समझते हैं, बाहर के एक्ट। एक जगह श्री नलिनीकांत गुप्त ने एक बड़ी अद्भुत बात कही है, मुझे कुछ समय लगा उसको सिंक करने में। चेस्टिटी इज नॉट एन एक्ट ऑफ द बॉडी, इट इज एन एक्ट ऑफ द माइंड। और तब अब देखो तो कौन मनुष्य है जो कहेगा कि वो चेस्ट है, उसके लिए अंदर में वो चाहिए कि माइंड के अंदर मुझे ये मिलेगा, मैं ये पजेस करूंगा, ये भाव जाना चाहिए। माता जी कहती हैं कि कंप्लीट मास्टरी टू गेन दिस रिजल्ट इज द लास्ट अचीवमेंट इन द फोर स्टेजेस। आई हैव स्पोकन ऑफ द फर्स्ट इज टू ऑब्जर्व वंस माइंड। ये प्योर माइंड लास्ट में आता है। डू नॉट बिलीव दैट इट इज सच एन ईजी थिंग। फॉर टू ऑब्जर्व योर थॉट्स यू मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम देम। इन द ऑर्डिनरी स्टेट द ऑर्डिनरी मैन डज नॉट डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ फ्रॉम हिज थॉट्स। तो हम लोग उस मशीन की तरह हैं जिसमें जब थॉट उठते हैं तब हमको पता चलता है, लेकिन अगर हम स्टेप बैक करें, ये बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा भी जो मन के रेल में जागरूक है आप देख सकते हैं ये विचार आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, ऐसी तरह आप देखिए अपने थॉट्स ऑब्जर्व कीजिए, वो आएंगे अपने आप, दिखाई देगा ये थॉट आ रहा है, दिखाई मतलब अपने अंदर में पता चलेगा कि ये थॉट्स आ रहे हैं। तो ऑब्जर्व करने के लिए सेपरेट, लेकिन अधिकांश लोगों से अगर पूछा जाए क्या सोच रहे हो, पता नहीं, दे ड्रॉ ए ब्लैंक। तो ये डिफरेंस है कि वो व्यक्ति जो कंप्यूटर में टाइप कर रहा है और दूसरा जो स्क्रीन को देख रहा है, जो स्क्रीन को देख रहा है उसको तब पता चलता है जब स्क्रीन पर वो शब्द और वाक्य आ जाते हैं, जो टाइप कर रहा है वो पहले उसके मन में वो विचार आया है सेंटेंस और तब वो टाइप करके वहां प्रकट हो रहा है। तो ब्रेन इज लाइक द मशीन। अधिकांश लोग शरीर से इतना बंधे होते हैं कि जब ब्रेन में वो जनरेट होते हैं थॉट्स तब पता चलता है, ब्रेन तक पहुंचते पहुंचते तो उन्होंने लंबा रास्ता तय कर लिया है। तो इसीलिए सीमा बता रही है कि पहले ही तुमको उनको पकड़ना चाहिए। चोर घर में आ गया, पिस्तौल आपके सिर पे तान के बैठा है, अब आप क्या करोगे? तो पहले ही हमको सचेत रहना है। तो पहला स्टेप है सेपरेट फ्रॉम थॉट। इन द ऑर्डिनरी स्टेट द ऑर्डिनरी मैन डज नॉट डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ फ्रॉम हिज थॉट्स। ही डज नॉट इवन नो दैट ही थिंग्स। ही थिंक्स बाय हैबिट। अपने आप मैकेनिकली चीजें अंदर में आ रही हैं और जैसे जैसे आ रही है उसमें बह रहा है, वो सोच रहा है यही सत्य है, जो विचार मेरे अंदर आया वही सत्य है। उसको वो किसी तुला पर परखता भी नहीं है कि क्या ये उचित है अनुचित है, ना विवेक की तुला पर ना चैत्य की तुला पे देखता ही नहीं। ये दो लाइट तो होनी चाहिए, विवेक की तुला पर देखो या चैत्य के प्रकाश में देखो, डिसर्निंग माइंड और द साइकिक फायर, कि भाई ये उचित है अनुचित नहीं, मेरे अंदर आ गया तो सही है, ये प्रिमिटिव अवस्था है। एंड इफ ही इज आस्क्ड ऑल ऑफ ए सडन व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, ही नोज नथिंग अबाउट इट, दैट इज टू से 95 टाइम्स ऑफ टू 100 ही विल आंसर आई डू नॉट नो। इसका मतलब वो निर्वाण अवस्था में नहीं है, मेरे अंदर तो विचार ही नहीं आते नहीं, वो कॉन्शियस ही नहीं है कि उसके अंदर विचार आ रहे हैं। There is a complete identification between the movement of thought and the consciousness of the being. वो तभी जागृत होता है जब वो पूरे व्यक्त हो जाएंगे वाणी में या लिखने में। इसीलिए कई लोगों को ये आवश्यक होता है, वो बोल के ही उनको पता चलता है कि अच्छा ये मैं सोच रहा था, लिख के ही पता चलता है कि मेरे अंदर ये विचार आ रहे थे। आई सजेस्ट, फिर वो दूसरा मेडिटेशन देती हैं, आई सजेस्ट दैट दिस इवनिंग इन अवर मेडिटेशन वी टेक अप दिस फर्स्ट एक्सरसाइज विच कंसिस्ट इन स्टैंडिंग बैक फ्रॉम वंस थॉट एंड लुकिंग एट इट। ये एक्सरसाइज देती हैं। अब तीसरी कंजुगेट वर्ड्स और उसके साथ एक्सरसाइज। ही हैज इंसल्टेड मी, ही हैज बीटन मी, He has humiliated me, he has robbed me. Those who nourish thoughts such as these never appease their hatred. माता जी से किसी ने पूछा था, जिसने पूछा था उसने स्वयं ये बताया, बोला माँ मैं जब निकलता हूं रोज मुझे इंसल्ट करती है वो सो एंड सो, मैं क्या करूं? माता जी का उत्तर बड़ा चौंकाने वाला था, इट इज द ईगो दैट गेट्स हर्ट एंड फील्स इंसल्टेड, द सोल इज नेवर इंसल्टेड। ये क्या उत्तर दे दिया। अगर छत्र सत्ता में क्या इंसल्ट है आप बताइए, वो तो देखे स्माइल करेगा कि क्या मूर्खता है, लेकिन ईगो हर्ट हो जाती, मुझे इंसल्ट किया तो नहीं, जानता नहीं मैं कौन हूं। होता है ना कई बार जब आप गेट पर आते हैं आश्रम के, रोक के पूछते हैं कौन हो तुम, लोग हमसे पूछ रहे हैं कौन है, गेस्ट हाउस में भी जाके आप जानते नहीं हम कौन है। अरे मौका मिला है, आपके ईगो को तौला परखा जा रहा है, आप जो भी होंगे पास दिखाइए गेट पर, वो आपकी यही आइडेंटिटी बची है कि आप आश्रम के गेस्ट हाउस में आए हैं, आपका पास ही अब आपकी आइडेंटिटी है। अब देखा जाए तो ये आई एम नॉट सेइंग ये बिहेवियर अच्छा नहीं है, लेकिन ये भगवान का ओरिजिनल, इसीलिए आश्रम एक डिवाइन मदर की रचना है, इसको आप नहीं समझ सकते हैं इस साधारण मन से। यहां तो अहंकार की बहुत ठुकाई होती है, पिटाई होती है, चिपिंग होती है मन में, अच्छा मेरा इंसल्ट किया, ऐसी नहीं, भगवान जिसने इंसल्ट किया उसको साथ बिठा देंगे, अब आप करो, मैं नहीं बैठूंगी उसके साथ, मैं नहीं बैठूंगा, मुझे उसको देखकर गुस्सा आता है, तो आपने योग क्या किया, आपने तो बस कहा कि मैंने साधना की, यू आर वेरी फार इवन फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप्स टू योगा विच इज कॉल्ड माइंड कंट्रोल। आपके हृदय में घृणा भरी है, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो कहते हैं नहीं उसको मैं देखूंगा भी नहीं, यहां रह रहे हैं बरसों, देखूंगा भी नहीं, मृत्यु की सैया पर भी नहीं मिलूंगा उससे। आप पूरा जीवन मत, और जगह जीवन व्यर्थ हो ठीक है, पर यहां रह के अगर जीवन व्यर्थ हो तो थ्राइज वो टू दोस हु आर स्ट्रांग एंड रेडी येट वेस्ट द फोर्स एंड मिसयूज द मोमेंट। बाहर कठिन है क्योंकि आप सराउंडेड हो ऐसे डिसेप्शन, बाहर एक जीवन की कला, यहां तो आप देख सकते हो चीजों को, अपने अंदर शिफ्ट कर सकते हो। अब माता जी बता रही हैं, द धम्म पद टेल्स अस फर्स्ट ऑफ ऑल दैट बैड थॉट्स ब्रिंग अबाउट सफरिंग एंड गुड थॉट्स ब्रिंग अबाउट हैप्पीनेस। नाउ इट गिव्स एग्जांपल्स ऑफ व्हाट बैड थॉट्स आर एंड टेल्स अस हाउ टू अवॉइड सफरिंग। अब वो बता रही है कि धम्म पद हमें कि बैड थॉट्स क्या होते हैं। Here is this first example. I repeat, he has insulted me. उसने मेरा अपमान किया. He has beaten me. He has humiliated me. He has robbed me. उसने मुझे धोखा दिया. मुझे cheating की. मेरे चुरा लिए. तो घृणा से हृदय भर जाता है. And it adds, those who nourish thoughts such as these never appease their hatred. उनका हृदय घृणा से ही भरा रहता है. इस घृणा बड़ी भयानक चीज है, दो चीजें हैं जो बड़ी भयानक होती हैं, घृणा और ईर्ष्या। ये जिस घर में आ गई उसको नष्ट करती हैं अंदर से। तो माँ कह रही हैं, एज आई हैव टोल्ड यू द धम्म पद विल गिव अस एग्जांपल्स बट एग्जांपल्स आर ओनली एग्जांपल्स, मतलब केवल इसमें लिमिट नहीं कि ये बस मैं देखूंगा, हर तरह का थॉट जो बैड थॉट है अपने लिए उसका ऐसा हित हो जाए। कोई ऐसा जाके समाधि में प्रे करता था लेकिन वो बड़ा फलने फूलने लगा, तो कहा माँ मैं तो रोज प्रे करता हूँ फलने फूलने क्यों लगा, बोली नेचुरली तू उन्हें मेरे संपर्क में ला रहा है तो मेरे संपर्क से क्या किसी की हानि होगी तू कहेगा कि हानि हो जाए और मैं हानि कर दूंगी, पर इस तरह के थॉट से हमें ही नुकसान होता है। वी मस्ट आवर सेल्स लर्न हाउ टू डिस्टिंग्विश थॉट्स दैट आर गुड फ्रॉम दोज दैट आर नॉट। और एक उसका सिंपल उदाहरण यह होता है कि बैड थॉट्स हमारे हृदय के अंदर पीड़ा सफरिंग लाते हैं, नाना प्रकार के कष्ट आदि व्याधि, सबसे बड़ी पीड़ा अंदर में जलता है इंसान, और सुंदर विचार सुविचार हमारे अंदर सुख लाते हैं। एंड फॉर दैट यू मस्ट ऑब्जर्व एज आई हैव सेड लाइक एन एनलाइटेंड जज। उस प्रकार अब तुमको दूसरा, अब तुम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, वॉच ओवर कर रहे हो। That is to say, as impartially as possible. It is one of the most indispensable conditions. उसने मुझे insult किया, क्या पता सत्य कह रहा हो। Impartial judge. क्या उसने गलत कहा? और अगर गलत कहा तो तुम्हें क्यों problem हो रही है? और अगर सच कहा तो अच्छी बात है, तुमने कुछ discover किया अपने अंदर जिसको change करना है। तो impartial judge. He has insulted me, he has beaten me, he has humiliated me, he has robbed me. Those who do not nourish thoughts such as these foster no hatred. अब ये fourth conjugate verse है कि जो इस तरह के विचार नहीं आते हैं जिनके अंदर, इसने मुझे चोट पहुंचाई, इसने मुझे पीड़ा दी, इसने मुझे घृणा उस जो ये सब विचार नहीं रखते हैं अपने अंदर, उनका हृदय साफ होता है और उनके अंदर घृणा नहीं आती। अब साफ हृदय कौन सा है जिसके अंदर ऐसे विचार नहीं है? तो माँ कह रही है, दिस इज द काउंटर पार्ट ऑफ व्हाट वी रेड द अदर डे, बट नोट दैट दिस कंसर्न्स ओनली थॉट्स दैट जेनरेट रिसेंटमेंट। बुद्ध एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे रहे हैं, बिटरनेस, कड़वाहट। इट इज बिकॉज रैंकर, रैंकर इज लिटरली कड़वाहट। अलॉन्ग विथ जेलसी, ईर्ष्या इज वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड कॉजेज ऑफ ह्यूमन मिजरी। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा सफेद कैसे? मेरा दाग तो पकड़ा गया, उसका नहीं पकड़ा गया, वो क्यों बच निकला? अरे तेरे ऊपर कृपा है इसलिए पकड़ा गया। तेरी चोरी पकड़ी गई तो जेल जाएगा, अच्छा भगवान तुझे मौका दे रहे हैं चेंज होने का। उसका नहीं पकड़ा गया, अभी वो दुर्योधन की अवस्था में है, भगवान उसको चॉकलेट दे रहे हैं। समय आएगा, उसका भी टाइम आएगा, लेकिन तुझे उसको चिंता नहीं करनी है। और क्यों आए? अच्छा है कि वो खुल जाए ग्रेस के प्रति। समय तो ऐसे ही हो, सब ग्रेस के प्रति खुल जाए। जब हम दुर्भावना रखते हैं तो अपना ही अहित नहीं करते हैं, संसार में भगवान के काम में भी बाधा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब भगवान को हमारी बैड विल जो जा रही है उसको। और साथ में बुद्ध कहते हैं कि जो हम बैड विल संसार में रिलीज करते हैं वो हजार गुना हमारे ऊपर आती है। एक जगह माता जी कहती हैं, द इल विल यू, द बैड विल यू जनरेट इन द वर्ल्ड फॉल्स बैक अपॉन यू। तो उसमें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मां कहती हैं, जो मानव पीड़ा है, दुख है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है रैंकर, बिटरनेस। और बिटरनेस कहां से आती? कड़वाहट। उसने मेरे साथ ऐसा किया, यहां तो आपकी बड़ी ट्रेनिंग होती है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसी के साथ तो काम करेगा, रोज देखेगा, रोज तुझे उसको नमस्ते कहना है। अब आप चेंज करो अपने अंदर। और जहां आपने कहा कि नहीं मैं नहीं कर सकता इसके साथ काम, मतलब यू हैव फेल्ड। कोई आपको बोलेगा नहीं यू हैव फेल्ड, बट यू हैव फेल्ड। तो यहां तो इस तरह से भगवान ले जाते हैं, जिसको आप नहीं चाहते उसका रोज दर्शन होगा। तो माँ कहती है कि कड़वाहट और ईर्ष्या सबसे अधिक कारण है मानव पीड़ा के। बट हाउ टू अवॉइड हैविंग रैंकर, तो इसको अवॉइड कैसे करें? माँ स्वयं ये प्रश्न कर रही है, क्योंकि ए लार्ज एंड जेनरस हार्ट इज सर्टेनली द बेस्ट मीन्स। सबसे सुंदर उपाय हृदय को विशाल बनाना, उदार बनाना। ठीक है, कोई बात नहीं, उसने ऐसा किया, कोई बात नहीं। किसी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। लेकिन वो फिजिकल एज से संबंधित नहीं है। जो चेतना में उदात होते हैं, नोबल होते हैं, वो पहले क्षमा करना सीखते हैं। आप देखिए अर्जुन को, अर्जुन अर्जुन क्यों है? वो कर्ण को, उसने उसके बेटे को मार डाला है, फिर भी जब वो जमीन पर, कान्हा सच में करूं कि नहीं करूं इसका वध? अरे देख, उसको किसने मना किया ब्रह्मास्त्र यूज करने को? लेकिन ये तो रथ से नीचे है, अरे वो दूसरा रथ मंगा सकता है, लेकिन पता नहीं कान्हा, अच्छा मैं तुझे कमांड दे रहा हूं दिव्य अस्त्र का प्रयोग कर, उसको मुक्ति मिलेगी, तब ही हेजिटेटिंगली। ये होते हैं ये बड़प्पन, उसके अंदर ये फीलिंग नहीं। ये कर्ण, इसको तो मैं आज दिखाऊंगा, ये भाव नहीं है। कर्ण के अंदर ये भाव रहता है, अर्जुन को एक दिन मैं मजा चखाऊंगा कि कौन बड़ा है। अर्जुन के अंदर ये भाव नहीं आता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्ण एंड अर्जुन। वन बिकम्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन एंड द अदर बिकम्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डेविल। तो यहां पर वो है, बट हाउ टू अवॉइड ए लार्ज एंड जनरस हार्ट इज सर्टेनली द बेस्ट मीन्स। की सबसे सुंदर है अगर एक विशाल और उदात हृदय हो, उदार हृदय हो, जो क्षमा करना जानता हो। बट दैट इज नॉट विद इन द रीच ऑफ ऑल। कंट्रोलिंग वंस थॉट मे बी ऑफ मोर जनरल यूज। हृदय को विशाल करना, ये तो विशालता से जुड़ जाओ तो हृदय विशाल हो जाएगा, लेकिन अपने विचारों को हम स्टडी कर सकते हैं और कंट्रोल। अब यहां पर कह रही है विचारों पे नियंत्रण, सेकेंड स्टेप वॉज वॉचिंग इम्पार्शियल जज की तरह। तीसरा कि उस व्यक्ति को छोड़ दो, कहां से आया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी सत्यता को देखो, यथार्थता को। जज क्या होता है? वो ये नहीं देखता है कि विटनेस कौन है, वो चीजों को परखता है, इसमें सत्यता यथार्थता है कि नहीं है। और तीसरा मां कह रही है, थॉट कंट्रोल इज द थर्ड स्टेप ऑफ आवर मेंटल डिसिप्लिन, नियंत्रण। वंस द एनलाइटेंड जज ऑफ आवर कॉन्शियसनेस इज डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन यूजफुल एंड हार्मफुल थॉट्स, The inner guard will come and allow to pass only approved thoughts, strictly refusing admission to all undesirable elements. जो आपको नहीं चाहिए उसको बोलो no, show me your gate pass. No, don't even see the gate pass. वो तो छंद बेस में आ जाएगा. Justified है ना, उसने मेरे साथ ये किया था तो घराना तो आएगी. Don't see pass. Out. No business to be here. Strictly refusing admission to all undesirable elements. जैसे आप घर के अंदर जो दारू पी के उन्मत्त अवस्था में व्यक्ति है, आप ये बोल के है तो मेरा रिश्तेदार नहीं. आउट. स्मोकर्स एंड ड्रिंकर्स नॉट अलाउड. तो उसी प्रकार से इन विचारों को बाहर रखिए, कैसा भी क्यों ना हो. विद ए कमांडिंग जेस्चर द गार्ड विल रिफ्यूज एंट्री टू एवरी बैड थॉट. उसमें क्या सोचना है, ये मेरे योग्य नहीं है. दूसरा क्या सोच रहा है ये नहीं, पर मेरे योग्य. अपनी नजरों में स्वयं गिर जाना कि मेरे अंदर किसी के प्रति ऐसे विचार आ रहे हैं, ये कहां से आए. हे मां, इनको हर लो. एंड पुश इट बैक एज फार एज पॉसिबल इन दिस मूवमेंट. इट इज दिस मूवमेंट ऑफ एडमिशन एंड रिफ्यूजल दैट वी कॉल थॉट कंट्रोल. एंड दिस विल बी द सब्जेक्ट ऑफ आवर मेडिटेशन टू नाइट. ये तीसरा मेडिटेशन. चौथा, For in truth, in this world, hatred is not appeased by hatred. घृणा का अंत घृणा से नहीं होता है. Hatred is appeased by love alone. घृणा का अंत प्रेम से होता है. This is the eternal law. यही सनातन सत्य है, यही शाश्वत धर्म है, सनातन धर्म है. लेकिन अब माँ, अब देखिए ये लास्ट वाला एक टॉप स्पिन है. माँ ये नहीं कह रही गांधी जी की तरह कि एक काल पे दूसरा काल. ये बाहर की अवस्था नहीं, अंदर की अवस्था. इसीलिए लोग गीता को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि गीता कहती घृणा मत रखो, जलसी मत रखो, तो फिर हम युद्ध क्यों लड़े. युद्ध लड़ो क्योंकि वह आवश्यक है लोक संग्रहार्थ, धर्म संस्थापना के लिए. लेकिन हृदय के अंदर घृणा मत रखो, मन को साफ रखो. यही कोड ऑफ कंडक्ट होता है क्षत्रिय का. गिर जाए भूमि पर और उसको प्यास लगी तो आप पानी लेने देने. इसीलिए रामायण इतनी अद्भुत है, इसीलिए महाभारत इतनी अद्भुत है. ये बिना बताए बता देती है. जब रावण गिर जाता है तो राम नहीं कहते देखा और कर, तेरे पापों का अंत हो गया. ये सब कुछ नहीं कहते हैं. तेरे पाप का घड़ा फूट गया, तूने जानकी के साथ कुछ भी नहीं. वो लक्ष्मण को कहते हैं, हे लक्ष्मण जाके उससे ज्ञान ले इसके पहले कि उसका राम नाम सत्य हो जाए. लिटरली क्या कह रहे हो आप. अरे उसके अंदर राजधर्म, अच्छा राजा था, देखो प्रजा को सुखी रखता, कुछ तो सीख लो उससे. ये होता है घृणा का अभाव. उसी तरह भीष्म के पास जाकर के श्री कृष्ण विनम्रता से. इसीलिए उस समय ये कोड ऑफ कंडक्ट होता था. जब मर जाता है उसके शव को आप क्षत नहीं करते हैं, क्योंकि उससे आपको घृणा नहीं है. युद्ध लड़ना है जहां लड़ना है, प्रतिकार करना है जहां करना है, लेकिन अंदर को साफ रखना है. माँ कहती हैं, यस देयर इज वन एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम विच इज लेस स्पोकन ऑफ बट विच सीम्स परहैप्स मोर अर्जेंट स्टिल इफ यू वांट थिंग्स टू चेंज इन द वर्ल्ड, समथिंग टू विच पीपल गिव वेरी लिटिल थॉट. माँ कहती हैं घृणा को प्रेम से वो छोड़ो, तुम पहले इससे भी पहले जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है वो ये है. आई एम गोइंग टू सरप्राइज यू, कहती हैं मैं तुम्हें अचंभित करने वाली हूँ. घृणा का तुम प्रेम से प्रत्युत्तर दो ये बात की बात है. इट इज दिस, इफ लव मस्ट बी रिटर्न फॉर हेट्रेड इन ऑर्डर दैट द वर्ल्ड में चेंज, वुड इट नॉट बी इवन मोर नेचुरल दैट लव शुड बी रिटर्न फॉर लव. घृणा को तुम प्यार, बहुत दूर की बात है. यहां तो प्रेम के उत्तर में लोग घृणा देते हैं, कहते हैं वो तो पहले इतना तो सीख लो हे मनुष्य. और फिर कहते हैं, इफ वन कंसिडर्स द लाइफ एंड एक्शन एंड हार्ट ऑफ मेन एज दे आर, वन वुड हैव एवरी राइट टू बी सरप्राइज्ड एट ऑल द हेट्रेड कंटेम्प्ट. वो गया गुजरा कंटेम्प्ट और एटलीस्ट द इनडिफरेंस विच आर रिटर्न फॉर दिस इमेंसिटी ऑफ लव विच द डिवाइन ग्रेस पोर्स अपॉन द वर्ल्ड. श्री अरविंद को किसी ने कहा, मैंने उसका कुछ अहित नहीं किया है, वो मेरी इतनी निंदा क्यों करता है. श्री अरविंद कहते हैं, अच्छी तुम कैटेगरी में हो. ईश्वर चंद विद्यासागर ने यह बात कही थी कि वो तुम्हारी निंदा करता है क्योंकि तुमने उसका अच्छा किया है. वो निंदा करके संतुष्ट हो रहा है कि उसने क्या अच्छा किया है, तो निंदा का पात्र है. मतलब कृतज्ञता की जगह वो निंदा पर निंदा का सुख. फॉर दिस इमेंस, ईश्वरचंद विद्यासागर का जो किया था कि वो मेरी निंदा क्यों कर रहा है, मैंने तो उसका कुछ भी अच्छा नहीं किया है. जोक. तो कहते हैं कि जितना प्रेम, असीम प्रेम और कृपा जो डिवाइन ग्रेस पोर कर रही है, उसके प्रत्युत्तर में मनुष्य क्या देता है। अब देखिए, उन्होंने धम्मपद के माध्यम से एक नया द्वार खोल दिया, क्योंकि धम्मपद में ग्रेस की बात नहीं है, लेकिन माता जी करती हैं ग्रेस की, डिवाइन लव की। फॉर दिस इमेंसिटी ऑफ लव विच एक्ट्स अपॉन द वर्ल्ड एट एवरी सेकेंड टू लीड इट टुवर्ड द डिवाइन डिलाइट एंड विच फाइंड सो पुअर ए रिस्पॉन्स इन द ह्यूमन हार्ट, बट पीपल हैव कंपैशन ओनली फॉर द विकेड, द डेफिशिएंट, द मिसशेपन, फॉर द अनसक्सेसफुल वंस एंड द फेल्योर, जिसको कहते हैं ना कि वो डाउन ट्रोडन के साथ हम खड़े होंगे। अरे पहले भगवान के साथ तो खड़े रहो जो तुम्हें पोर कर रहा है। ट्रूली इट इज एन एनकरेजमेंट टू विकेडनेस एंड फेल्योर। अब उन्होंने समझा दिया कि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तुम्हारे साथ विकेड है तो तुम उसको गले लगा रहे हो, हृदय के अंदर घृणा मत रखो, अदरवाइज तुम इनकरेज कर रहे हो। तो यहां पर अंत में माँ कहती हैं, इफ वन थॉट ए लिटिल मोर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम परहैप्स वन वुड हैव लेस नीड टू इंसिस्ट ऑन द रिटर्निंग नेसेसिटी ऑफ रिटर्निंग लव फॉर हेट्रेड, बिकॉज इफ द ह्यूमन हार्ट रिस्पॉन्डेड इन ऑल सिंसेरिटी टू द लव दैट इज बींग पोर्ड इन टू इट विद द स्पॉन्टेनियस ग्रैटिट्यूड ऑफ ए लव विच अंडरस्टैंड्स एंड अप्रिशिएट्स, देन थिंग्स वुड चेंज क्विकली इन द वर्ल्ड। अगर हमारे अंदर भगवान के प्रेम का प्रत्युत्तर में प्रेम, कृतज्ञता, करुणा जागृत हो जाए तो हम हर चीज के अंदर उसी को ढूंढेंगे और हर चीज का प्रत्युत्तर हमारा स्वाभाविक रूप से वो दिव्य प्रेम, वो करुणा, वो क्षमा, ये सब हमारे जीवन का एक नेचुरल, एक स्वाभाविक वृत्ति बन जाएगी। नमस्ते।